بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو توریت پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا और यदि काफिरों को समय देने के संबंध में आपके पालनहार की परंपरा पहले से निर्धारित न होती तो निश्चित रूप से इसी संसार में उनके बीच फैसला कर दिया जाता और निसंदेह वे लोग गहरे संदेह में पड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आपका पालनहार उनके कर्मों का बदला उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान करेगा और निसंदेह वे जो कुछ करते हैं वो उससे पूर्णतः अवगत है। तो हे पैगंबर, जैसा कि आपको आदेश दिया गया है, आप और आपके साथ ईश्वर की ओर आने वाले लोग प्रतिरोध करें और उद्दंडता न करें कि निसंदेह जो कुछ तुम लोग करते हो ईश्वर उसे देखने वाला है, और अत्याचारियों पर भरोसा न करो कि नरक की आग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी, और ये जान लो कि ईश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं है और किसी की ओर से तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। श्रोताओ, आज शुक्रवार है, तीर की 24, जुलाई की 15 और जिलहिज्जा की भी 15 तारीख। श्रोताओ, 15 जिलहिज्जा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का शुभ जन्म दिवस है, हम हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आपको सुनाएंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत की जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप हमारी समय की सभा से सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान इलाके में अस्थिरता पैदा करने वाली किसी भी बाहरी कार्यवाही को सहन नहीं करेगा। संयुक्त अरब इमारात के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अबुधाबी किसी भी देश और ईरान के खिलाफ बनने वाले किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत में संसद भवन परिसर में धरना और प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले आदेश का विरोध शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए लोकसभा ने सफाई दी है। पश्चिमी एशिया के दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान इलाके में अस्थिरता पैदा करने वाली किसी भी कार्यवाही को सहन नहीं करेगा, इस तरह की हर कोशिश का कड़ाई से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि इस इलाके में ज़ायूनियों के स्वार्थों के लिए कोई स्थान नहीं है। इलाके की कुछ सरकारों के इसराइल से समझौते कर लेने से ज़ायूनियों को सुरक्षा हासिल नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सामरिक शक्ति से इलाके में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जबकि अमरीका और दूसरी बाहरी ताकतें इलाके में शांति व सुरक्षा की मदद नहीं करती बल्कि उसे निशाना बनाती हैं। दूसरी ओर ईरान के आर्म्ड फोर्सेज के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि ईरान को सामरिक व सुरक्षा खतरों का सामना है, इसलिए देश की सारी फोर्सेस को चाहिए कि इन कठिन व पेचीदा जंगों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। जनरल बाकरी ने कहा कि अफगानिस्तान से लगी सीमा और इसी तरह पश्चिम उत्तरी सीमा पर सुरक्षा खतरों का सामना है, देश की फोर्सेस को चाहिए कि इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। इस बीच ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि दुश्मनों को अच्छी तरह मालूम है कि ईरान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने के बयान की भी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शिकारची ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइली प्रधानमंत्री याइर लवीद की ओर से इस शब्द का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी का मकसद फारस खाड़ी के इलाके के तेल को लूटना, ध्वस्त हो चुकी अमरीकी साख की मरम्मत करना और इसराइल के विनाश को टालना तथा अमरीकी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाना है। ईरानी अधिकारी ने अमरीका को सलाह दी कि इलाके के जमीनी तथ्यों को समझे और पिछले अनुभवों से पाठ ले। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने भी कहा कि अगर अमरीकी अधिकारी इलाके में इसराइल की सामरिक बढ़त और वर्चस्व कायम करने की बात कर रहे हैं तो इसे केवल ईरान के लिए धमकी मान लेना बड़ी भूल है। उन्होंने ट्वीट किया कि जो बाइडेन और लबी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के अनुसार इलाके के देशों के लिए यह जरूरी है कि वे इसराइल के वर्चस्व को कबूल करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जब अमरीकी राष्ट्रपतियों के दौरे का पहला पड़ाव इसराइल होगा और उनका पहला मकसद इसराइल की सुरक्षा और वर्चस्व को कायम रखना होगा, तब तक इलाके के देशों में कभी शांति और स्थिरता नहीं आ सकती। संयुक्त अरब इमारात के वरिष्ठ अधिकारी अनवर करकाश ने कहा कि अबू धाबी किसी भी देश, खासतौर पर ईरान के खिलाफ बनने वाले किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इमारात के प्रमुख शेख मोहम्मद बिन जायद के कूटनीतिक मामलों के सलाहकार अनवर करकाश ने कहा कि इमारात अपना राजदूत तेहरान भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि कूटनीतिक संबंध मजबूत हों और तेहरान के साथ टकराव की नीति को अबू धाबी का कभी भी समर्थन नहीं होगा। इमारात के प्रमुख शेख मोहम्मद बिन जायद की पेरिस यात्रा से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनवर करकाश ने कहा कि इमारात कभी भी ईरान विरोधी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही उन्होंने ईरान की नीतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के उपायों का तो समर्थन करते हैं जो हमारी सुरक्षा करें, लेकिन शर्त यह है कि इन उपायों में किसी अन्य देश को निशाना न बनाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा को ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय देशों का अलायंस बनाने की अमेरिका और इसराइल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, मगर इमारात के वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान से उन अटकलों को बल मिला है जिनमें कहा गया है कि इस इलाके में अमरीका के पांव उखड़ चुके हैं और इसके नतीजे में इसराइल भी बुरी तरह कमजोर हुआ है। ईरानी और गैर ईरानी वरिष्ठ पत्रकारों ने स्वीडन के पत्रकार संगठन के नाम एक खुला खत लिखा है जिसमें संगठन से मांग की गई है कि वो स्वीडन की सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने के लिए कहे। तेहरान स्थित ईरानी और विदेशी पत्रकारों ने अपने पत्र में लिखा कि स्वीडन के पत्रकार इस देश की सरकार को समझाएं कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना जरूरी है। पत्र में कहा गया है कि हर तरह के राजनीतिक रुझानों और एकपक्षीय सोच से दूर रहते हुए अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और हर आरोपी को उसके आरंभिक अधिकार जैसे वकील की सुविधा हासिल होनी चाहिए। पत्रकारों ने लिखा कि स्वीडन के आजाद पत्रकारों से हम आशा करते हैं कि नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के सम्मान के सिलसिले में अपनी भूमिका निभाएंगे। भारत में खाद्यान्न भंडारों के निर्माण की एक बड़ी परियोजना में संयुक्त अरब इमारात के $2 अरब के निवेश के कार्यक्रम पर इमारात के भीतर और कुछ अन्य अरब देशों में प्रतिक्रिया देखने में आई है। अरब देशों के सोशल मीडिया यूजर्स ने 14 जुलाई को I2U2 नामक गुट की शिखर बैठक के बाद जारी होने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। इसराइल के साथ शांति समझौतों को समर्थन देने वाले इस बयान में कहा गया है कि इमारात आने वाले वर्षों में $2 अरब की रकम भारत में खाद्यान्न भंडारों के निर्माण पर निवेश करेगा, जबकि इसराइल और अमेरिका इस परियोजना में अपनी तकनीक शेयर करेंगे। इस परियोजना का मकसद दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया में खाद्यान्न की किल्लत के संकट का सामना करना बताया गया है। अरब देशों में सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि पैगंबर इस्लाम के अपमान के बाद भारत में जिम्मेदाराना रवैया देखने में नहीं आया और इसके बावजूद इमारात वहां $2 अरब का निवेश करने का इरादा रखता है। यूजर्स ने सवाल किया कि इमारात इस रकम का निवेश किसी अरब देश में क्यों नहीं करता। वहीं कुछ अन्य ने कहा कि इमारात आने वाले वर्षों में खाद्यान्न की समस्या को हल करने का इरादा रखता है। भारत में संसद भवन परिसर में धरना और प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले आदेश का विरोध शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए लोकसभा सचिवालय ने सफाई दी। भारतीय मीडिया के अनुसार संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकने संबंधी सर्कुलर को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के एतराज के बाद लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ये महज एक सामान्य प्रक्रिया है और हर सत्र से पहले इसे जारी किया जाता है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। पिछले 3 अगस्त 2021 को भी संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। जयराम रमेश जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री थे तब भी ये सलाह जारी की गई थी। सर्कुलर को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था। इसमें पार्लियामेंट की इस बुलेटिन को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा था कि विश्व गुरु का ताजा प्रहार धरना मना है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने बाइडेन प्रशासन से अपील की थी कि वो CCTSA प्रतिबंधों में छूट के जरिए भारत की मदद करे। इससे भारत की रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की डील का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय सूत्रों के अनुसार अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ध्वनिमत से CAATSA कानून में बदलाव किया है, जिसके बाद अब भारत पर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर कठोर CAATSA प्रतिबंध नहीं लगेंगे और चीन की आक्रामकता से निपटने में मदद के लिए इन प्रतिबंधों में भारत को छूट दी गई है। यह संशोधन गुरुवार को पारित किया गया। पश्चिमी एशिया के दौरे पर आए अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। जहां वेस्ट बैंक में ये मुलाकात हुई, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने बाइडेन के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। जो बाइडेन ने फिलिस्तीनी अस्पतालों को $100 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया और टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की। अमेरिका फिलिस्तीन इसराइल विवाद में खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिस्तीनियों का कहना है कि अमेरिका ने हमेशा इसराइल का साथ दिया है और फिलिस्तीन को नुकसान पहुंचाया है। जो बाइडेन का अगला पड़ाव सऊदी अरब है, जहां वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अमरीका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए $201 मिलियन की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में हैं और वो सऊदी अरब जाने वाले हैं। इस बीच सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इसराइल के युद्धक विमानों के अलावा समस्त विमानों के लिए इस देश की वायु सीमा खुली है। समाचार एजेंसी इरना ने रूसियल योम के हवाले से बताया कि आज जो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सिल्वान ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सऊदी अरब ने इसराइली विमानों के लिए अपनी वायुसीमा खोलने पर आधारित जो ऐतिहासिक फैसला किया है, उसका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया और इसका नतीजा बाइडेन की सऊदी अरब की यात्रा से अपने शिखर पर पहुंच जाएगा। श्रीलंका के संसद सभापति अभय वर्धने ने शुक्रवार को गोटाबाया राजपक्षे के त्यागपत्र की घोषणा की और कहा कि 7 दिन के अंदर देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। प्राप्त समाचारों के अनुसार गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 7 दिन के अंदर नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर में गुरुवार को मिसाइल से हमला किया, जिसमें कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की सूचना है और 100 से अधिक लोग घायल हुए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। क्या अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अरबों की चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं? पेश है एक समीक्षा मोहम्मद मेहदी की जबानी।
मध्य पूर्व और दुनिया में अमेरिका के घट रहे प्रभाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 से 16 जुलाई तक पश्चिम एशिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उनके सामने चुनौतियों का एक ढेर है। बाइडेन ने अपने चुनावी प्रचार में अमेरिकी मतदाताओं से ईरान परमाणु समझौते में वापसी का वादा किया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो भी अपने पूर्ववर्ती ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तेल अवीव पहुंचकर इसराइल के सुर में सुर मिलाना आरंभ कर दिया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। शीत युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दो परमाणु शक्तियां एक बार फिर आमने सामने हैं और दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका की एक और बड़ी चिंता चीन की बढ़ती ताकत है। चीन को अमेरिका अपने लिए फिलहाल सबसे बड़ा खतरा मानता है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक ने ये दावा किया था कि चीन किसी भी तरह दुनिया का अकेला सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन के इस दौरे को कोई विशेष महत्व नहीं मिल रहा है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि वाशिंगटन को अब इस क्षेत्र से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और क्षेत्र में ईरान जैसी दूसरी ताकतें उभर रही हैं जो सीधे अमेरिका को चुनौतियां दे रही हैं। वहीं सऊदी अरब, जो इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी था, अब अमेरिका को अपना भरोसेमंद समर्थक नहीं मानता है। जब बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सऊदी अरब को एक ऐसा अछूत देश बताया था जो अपने आलोचकों की हत्या करवाता है और विरोध के स्वरों को दबाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि वो अपने समकक्ष अधिकारी से ही मुलाकात कर सकते हैं। फरवरी में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने लगी तो बाइडेन प्रशासन ने रियाद से तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए कहा था, लेकिन रियाद ने वाशिंगटन के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब बाइडेन एक बार फिर सऊदी अरब से अपना ये अनुरोध दोहराएंगे। अगर रियाज उनके इस अनुरोध को स्वीकार भी कर लेता है तो विश्वास की वो डोर जो कमजोर पड़ चुकी है वो इतनी आसानी से मजबूत नहीं होगी। जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब फिलहाल अमेरिका को किसी भी तरह की मदद पहुंचाने के मूड में नहीं है और वो रूस को एक बार फिर खुद से दूर नहीं करना चाहता। कुछ महीने पहले ही ऐसी रिपोर्टें आई थी कि अमेरिकी प्रशासन की कोशिशों के बावजूद सऊदी शासकों ने बाइडेन से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का उसी सऊदी अरब के दौरे पर जाना उसकी घटती साख को दिखाता है, क्योंकि जो अमेरिका पर कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था और जब चाहता था अरब शासकों को अपने दरबार में हाजिर कर लिया करता था, अब वो उन्हीं की चौखट पर नाक रगड़ रहा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
तैतीस दिवसीय युद्ध को 16 साल बीत गए हैं। इस युद्ध में इसराइल ने क्या खोया और क्या पाया, जायजा ले रहे हैं अहमद अब्बास।
2006 में इसराइल ने लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध को 16 साल बीत गए हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि 2006 में हुए 33 दिवसीय युद्ध को पश्चिम एशिया के लिए क्यों अहम मोड़ माना जाता है। दरअसल इस युद्ध का उद्देश्य एक नया मध्य पूर्व बनाना, लेबनान और फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध को नष्ट कर देना और ईरान को क्षेत्र में अलग थलग करना था। 33 दिवसीय युद्ध की 16वीं वर्षगांठ पर अपने भाषण में हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है, 9/11 के बाद अमेरिका ने इस घटना को अफगानिस्तान और इराक पर कब्जे के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद वो इसे क्षेत्र में इस्लामी प्रतिरोध को खत्म करने और ईरान को अलग थलग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि पूरे क्षेत्र में इसराइल की तूती बोल सके। اس کے علاوہ اسرائیل سن 2000 میں دکشنی لبنان میں ہوئی اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لبنان میں اسلامی پرتیرودھ نے سن 2000 میں اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، جس سے کھیتر میں اسرائیل کی ساکھ کو بڑا جھٹکا لگا تھا۔ زائنی سینہ 2006 میں حزب اللہ کے خلاف یدھ چھیڑ کر اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو واپس لوٹانا چاہتی تھی۔ زائنی ادھیکاریوں نے اس یدھ کی شروعات کے ساتھ ہی اعلان کیا تھا کہ وہ حزب اللہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے یا کم سے کم اسے نہتھا کر دیں گے۔ لیکن 33 دن کے بعد جب اسرائیل کو یدھ ویرام کے لیے مجبور ہونا پڑا تو نتیجہ اس کی اچھا کے انوسار نہیں تھا۔ حزب اللہ نے اس یدھ میں نہ صرف اسرائیلی سینا کے حملوں کے مقابلے میں پرتیرودھ کیا تھا بلکہ زائنی شاسن کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ حزب اللہ نے تل ابیب سمیت اویدھ ادھیکرت علاقوں میں کافی بھیتر تک لکشوں کو نشانہ بنایا، زائنی نوسینا کے آدھنک یدھ پوت کو دھوست کر دیا اور اس کے میرکاوا ٹینکوں کو آسانی سے نشانہ بنا کر اس کی ساری دھاک مٹی میں ملا دی۔ دوسری اور اس یدھ میں حزب اللہ کا نہ ہی وناش ہوا اور نہ ہی اسے نہتھا کیا جا سکا۔ لبنان پر اسرائیل کے پھر سے قبضہ کرنے کا سپنا بھی پورا نہیں ہو سکا، بلکہ کھیتر میں اسرائیل کی جو اجے والی چھوی بن گئی تھی وہ نشٹ ہو گئی۔ اس یدھ کے مہتوپورن پریڑاموں میں سے ایک یہ ہے کہ 16 سال بیت جانے کے بعد بھی اسرائیل لبنان پر سیدھا حملہ کرنے کا ساہس نہیں جٹا پا رہا ہے۔ اسرائیل نے اگر چھوٹے استر پر اسلامی پرتیرودھ کو نشانہ بنانے کا پریاس کیا بھی تو حزب اللہ نے اس کا ترنت منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس یدھ کا ایک دوسرا مہتوپورن پریڑام اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کے سب سے بڑے سمرتھک امریکہ کی ساکھ کا کھیتر میں لگاتار گھٹنا ہے۔ اب اس کھیتر میں امریکہ کی پہلے جیسی ساکھ نہیں رہ گئی ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کے شاسکوں میں اتنا ساہس آ گیا ہے کہ وہ امریکی راشٹرپتی سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سبھی 33 دیوسیہ یدھ کے رنتک پریڑام ہیں جنہوں نے پشچم ایشیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاست جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ نے راجیہ کی استھتی کو لے کر کیندر سرکار کی آلوچنا کی ہے۔ بیورا دے رہے ہیں شرینگر سے سبط حسن۔
جموں کشمیر کے بھوتپورو مکھی منتری اور لوک سبھا سانسد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا انت نہیں ہو رہا ہے اور آئے دیوس لوگ مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الگاؤواد اور آتنکواد کا سماپت اسی صورت میں ہوگا جب لوگوں کے دل جیتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 2.5 ورشوں سے جو نیتیاں نئی دہلی نے اپنائی ہیں اس کا لابھ زمینی استر پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفل پوروک نیتیاں گننا الگ بات ہے، پرنتو جو زمینی استر پر استھتی ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں خوف ڈالا جا رہا ہے، پرنتو خوف کسی بھی سمسیا کا سمادھان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کے بل پر لوگوں کی زبان بند کرنا کسی بھی سماج میں اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ترنگے کو لوگ دل سے سویکار کرنے چاہیے اور اس کے لیے کاریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبردستی فیصلے کرنے سے یہاں پر شانتی استھاپک نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نئی دہلی یہاں پر چناؤ آیوجت کرتی ہے تو یہ اچھے سنکیت ہوں گے، کیونکہ لوگ اب بیوروکریسی سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ اس بیچ جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے سری نگر میں ایک سمباداتا سمیلن کو سمبوجت کرتے ہوئے امرناتھ گھٹنا پر پوری جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جو گھٹنا گھٹی ہے وہ دکھد ہے، پرنتو فیوچر میں ایسی کوئی گھٹنا نہ گھٹے اس کے حوالے سے کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیوچر اسٹریٹجی بھی اپنا رکھی ہے۔ انہوں نے وہ آنکڑے بھی دیے جو اس گھٹنا میں لوگ ہتاہت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری سنکھیا ہے اس کے انوسار 15 لوگوں کی مرتیو ہو گئی، جبکہ 40 کے نکٹ لوگ لاپتا ہوئے تھے جن کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔
استھانیہ ناگرکوں نے کیول اتنا ہی نہیں بلکہ ہر پرکار کا سہیوگ کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ موٹے طور پر ریسکیو آپریشن اب ختم ہو گیا ہے۔ ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنے یاتری ہیں وہ انشیورڈ ہیں، 5 لاکھ روپے کا انشورنس ان کا ہے۔ شرائن بورڈ کی طرف سے 5 لاکھ روپیہ اور جو ہمارے مردک ہیں ان کے نکٹستھ پریجنوں کو دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جس طرح سے امرناتھ یاتریوں کا سواگت کیا وہ بہت ہی اچھے حروف میں لکھا جائے گا۔ سبط محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा, और अब पैगंबर इस्लाम के पौत्र इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, इमाम हादी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। स्वाति और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
सन 212 हिजरी के हज का मौसम समापन की ओर बढ़ रहा था। हाजी तवाफ कर चुके थे, शैतान की मूर्तियों पर पत्थर भी मार चुके थे और कुर्बानी वे कर चुके थे। सभी पैगंबर इस्लाम के खुदा की इबादत में व्यस्त थे और पैगंबर इस्लाम का खुदा एक अन्य संपूर्ण इंसान को इस दुनिया में भेज रहा था। मदीने के पास सरिया नामक एक गांव में शिया मुसलमानों के 10वें इमाम हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता की उम्र 17 साल थी और 9 साल उन्हें इमामत की महान जिम्मेदारी संभाले हुए हो चुके थे। इस बच्चे का नाम अली इब्ने मोहम्मद रखा गया।
अली इब्ने मोहम्मद इमाम मोहम्मद तकी के बेटे और इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के पोते हैं। नकी और हादी उनके सबसे प्रसिद्ध लकब हैं। 220 हिजरी में अपने पिता की शहादत के बाद उन्होंने इमामत की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। अपने पिता के बाद वे दूसरे ऐसे इमाम थे जो बचपन में ही इमाम बन गए थे। लोगों के बीच शिया इमामों की लोकप्रियता के कारण उनके दुश्मन, विशेषकर बनी अब्बास के खलीफा, तरह तरह के बहानों से लोगों को इमामों से दूर रखने की कोशिशें करते थे। शिया मुसलमानों के 8 वर्षीय इमाम के कैदखाने का प्रमुख मदीने का एक विद्वान था जिसका नाम अब्दुल्ला जुनैदी था, जिसे गुरु के रूप में इमाम पर थोपा गया था। जुनैदी सरिया स्थित एक इमारत में इमाम हादी की निगरानी करता था और रात के समय इमारत के दरवाजे को बाहर से बंद करके चाबी अपने साथ ले जाता था। इस प्रकार इमाम हादी के चाहने वाले उनकी बातों को सुनने और उनसे मार्गदर्शन हासिल करने से वंचित रह जाते थे। एक दिन लोगों ने जुनैदी से पूछा कि वह हाशिमी बच्चा क्या कहता है जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है।
जुनैदी ने एक नजर लोगों पर डाली और कहा, उसे बच्चा मत कहो, बल्कि कहो हाशिमी बुजुर्ग। लोग सोचते हैं कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि मैं खुद उससे सीखता हूँ। कुछ दिन बाद फिर से लोगों ने उससे पूछा, अब वो हाशिमी बच्चा कैसा है? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम वो धरती पर सबसे बेहतर इंसान और उसे खुदा ने सर्वश्रेष्ठ पैदा किया है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जुनैदी इमाम हादी की इमामत पर ईमान ले आया और उनके चाहने वालों में शामिल हो गया। इस दास्तान से और इस तरह की कई दास्तानों से इमाम हादी की मार्गदर्शक की भूमिका का पता चलता है। सही अर्थ में वे ईश्वर के मार्ग की ओर उम्मत का मार्गदर्शन करने वाले थे।
दुश्मन एक सवाल यह खड़ा करते थे कि क्या एक बच्चा इमाम बन सकता है? यह सवाल इमाम हादी के पिता इमाम जवाद के बारे में भी उठाया गया था, जिसका जवाब वे कुरान से इस तरह से दिया करते थे, हमने उन पर अपनी वही नाजिल की जबकि वह बच्चे थे। हजरत यूसुफ और हजरत मूसा को भी बचपन में ही नबी बना दिया गया था, इसलिए कहा जा सकता है कि नबूवत और इमामत का संबंध उम्र से नहीं है। संभव है कि किसी बच्चे को नबी बना दिया जाए और संभव है कि यह जिम्मेदारी किसी 40 साल के व्यक्ति को सौंप दी जाए। कुरान में इसका एक दूसरा उदाहरण हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। अपने जन्म के कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ईश्वर की मदद से बोलना शुरू कर दिया, मैं खुदा का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब प्रदान की है, मेरे वजूद को बरकत वाला बनाया है, जब तक जिंदा हूँ मुझसे नमाज और जकात की सिफारिश की है, मुझे मेरी माँ के प्रति नेक इंसान करार दिया है और मुझे कट्टर और अपराधी नहीं बनाया है। सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरा जन्म हुआ और उस दिन जब मेरा निधन होगा और उस दिन पर जब भी मैं फिर से जिंदा किया जाऊंगा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पालने में ही थे कि खुदा ने उन्हें नबी बना दिया और उन्हें ईश्वरीय किताब प्रदान कर दी। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति कि जो पैगंबर इस्लाम का वंशज है, अगर खुदा उसे इमामत प्रदान कर रहा है तो कुछ लोगों के लिए ये बात स्वीकार्य क्यों नहीं है? बचपन में इमाम नियुक्त होना ऐसी घटना थी जो हज़रत इमाम जवाद और हज़रत इमाम हदी दोनों के साथ घटी, ताकि हज़रत इमाम मेहदी के बारे में कोई संदेह बाकी ना रह जाए और उनकी इमामत से पहले ही ये शंका और संदेह दूर हो जाए। दुश्मनों की रुकावटों के बावजूद मदीने के लोगों के बीच इमाम की लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई और उनकी इमामत को लेकर लोगों का विश्वास मजबूत होता गया, जिससे अब्बासी खिलाफत को खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए हुकूमत ने मदीने में इमाम की उपस्थिति को अपने लिए उचित नहीं समझा और 233 हिजरी में अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने इमाम को अपनी कड़ी निगरानी में रखने के लिए मदीने से सामर्रा स्थानांतरित कर दिया। ये शहर वास्तव में एक सैन्य छावनी था। इमाम ने अपना बाकी जीवन अब्बासी खलीफा के सैन्य बलों के घेरे में गुजारा।
हालांकि अब्बासी खिलाफत की यह रणनीति भी इमाम हादी को दुनिया भर में अपने शियों से संपर्क करने से नहीं रोक सकी, बल्कि उन्होंने इस संबंध को सुरक्षित रखने के लिए अधिक प्रयास किए। खुफिया तौर पर वकीलों का एक नेटवर्क जो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के जमाने में तैयार हुआ था, इमाम हादी के जमाने में उसमें नई जान फूकी गई। शिया मुसलमानों के 10वें इमाम योग्य लोगों की पहचान करके उनका प्रशिक्षण करते थे। इन लोगों में से कुछ को इमाम के वकील या प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, जैसे कि अब्दुल अजीम हसनी, हसन बिन राशिद, उस्मान बिन सईद अमरी। वे 11 साल की उम्र से इमाम हादी की सेवा में थे और बाद में इमाम मेहदी के विशेष प्रतिनिधि चुने गए।
इमाम के वकील खुम्स या धार्मिक दान को इकट्ठा करके उसको लोगों तक पहुंचाते या उसके हकदारों तक पहुंचा दिया करते थे। इसी प्रकार वे लोगों के सवालों को इमाम तक पहुंचाते और फिर उसके जवाबों को लोगों तक पहुंचाया करते थे। इसी तरह से इमाम के ज़माने में उनके शिष्यों से उनके उत्तराधिकारी का परिचय भी करवाते थे। यह नेटवर्क इतना मजबूत था कि अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने उसे नियंत्रित या फिर नष्ट करने की योजना बनाई। उसने इसके लिए एक विशेष सैन्य दल तैयार किया था और इमाम के कई वकीलों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया या फिर उन्हें शहीद कर दिया, लेकिन वो इस नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल नहीं हो सका।
इमाम हादी पर अब्बासी खलीफाओं की ओर से बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता था। इस दबाव के बावजूद इमाम जियारतों और दुआओं के रूप में अपने पूर्वजों का परिचय देते थे। ऐसे ही एक मशहूर जियारत का नाम है जामे कबीरा। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने इस जियारत में शिया मत के मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इस जियारत में अहले बेते पैगंबर, उनके असली उत्तराधिकारियों और आदर्शों का वर्णन किया है और उनके मासूम होने पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद इमाम हादी के जमाने में कुछ लोगों ने इमामों का दर्जा खुदा तक बढ़ा दिया, जो पूरी तरह से गलत है। امام ہادی نے ایسے لوگوں سے دور رہنے پر بل دیا ہے اور سفارش کی ہے کہ اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے 100 بار تکبیر پڑھی جائے تاکہ پڑھنے والا اماموں کے درجے کو خدا کی بندگی تک سیمت رہنے دے۔
ایک دوسری زیارت جس کا نام زیارت غدیریہ ہے امام ہادی سے سمبندھت ہے۔ اسے غدیر کے دن حضرت علی علیہ السلام کی زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس زیارت میں حضرت علی علیہ السلام کے 150 گڑوں کا گڑ گان کیا گیا ہے اور کچھ راجنیتک تتھا ساماجک سمسیاؤں کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے۔ آخرکار عباسی خلیفہ جب خود کو شیعہ مسلمانوں کے اماموں کے مقابلے میں ایوگی اور مجبور پاتے تھے تو انہیں شہید کرنے کی یوجنا بناتے تھے۔ سن 254 ہجری میں عباسی خلیفہ معتمد نے سامرہ میں امام کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ امام ہادی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری نے اپنے پتا کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر انہیں گھر میں ہی دفن کر دیا گیا۔
ورشوں بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی اسی گھر میں شہید کر دیا گیا اور انہیں ان کے پتا کی پوتر قبر کے نکٹ دفنا دیا گیا۔ عراق کے سامرہ شہر میں استھت دونوں اماموں کے پوتر مزاروں کو ہرمین عسکرین کہا جاتا ہے اور دنیا بھر سے شیعہ مسلمان ان کی زیارت کرنے وہاں جاتے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام آج بھی دوسرے اماموں کی طرح لوگوں کا مارگدرشن کر رہے ہیں اور لوگ ان کی انوکمپاؤں سے لابھانوت ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے مطابق جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ خدا سے روزی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ آج کا کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شدہ آپ سن رہے تھے پیغمبر اسلام کے پوتر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے شبھ جن دیوس پر ہمارا وشیش کارکرم۔ ہم اس شبھ اوسر پر آپ کو ایک بار پھر ہاردک بدھائیاں پرست کرتے ہیں۔ اور شدہ، اب آپ کی سیوا میں پرست ہے اس سمے کی سبھا کا انتم کارکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔ دوستو، کارکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے۔ اپنی دیدی مریم مہر دادی
اور بھیا احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، ہمیں آشا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سکوشل ہوں گے اور اپنا من پسند کارکرم سننے کے لیے تیار ہوں گے،
اور دیدی بھی ای میلز اور کمنٹس اسی طرح آپ کے ویچاروں کے ساتھ تیار بیٹھی ہیں کارکرم پتر سنسار شروع کرنے کے لیے۔
جی، تو سب سے پہلے ای میل سے شروع کر رہے ہیں۔ گوراڈی بھاگلپور بہار سے ڈاکٹر ہیمنت کمار کا لکھتے ہیں کہ اگنی پت یوجنا کا ویاپک ویرودھ درشاتا ہے کہ ویرودھ راشٹر ویاپی ہے۔ نشچت روپ سے اس ویرودھ کا کارن بھی راشٹر ویاپی ہی ہوگا۔ اگنی پت یوجنا سے دیش کو لابھ ہوگا، اتنا کہہ دینے ماتر سے دیش لابھانوت نہیں ہو جاتا ہے۔ سرکار کو یہ سپشٹ کرنا ہوگا کہ اس یوجنا سے سینا میں نوکریاں نہیں گھٹیں گی اور سینکوں میں سب کو برابری کا برتاؤ ملے گا۔ دیش اجولت ہے، نوجوان بے چین ہیں، غصہ سڑک پر ہے، اس غصے کی لپیٹیں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ایسے میں دیش کے پردھان منتری کو سامنے آنا چاہیے۔ 1.5 سال میں 10 لاکھ روزگار دینے کی گھوشنا کرنے والے پی ایم نریندر مودی کو یہ سپشٹ کرنا ہوگا کہ سینا میں بھرتی اسی گھوشنا کا حصہ ہے۔ یہ نوکری دینے والی یوجنا ہے، نوکری دے کر چھیننے والی نہیں ہے۔ کیا ہر مہتوپورن موقع پر چپ رہنے والے پردھان منتری کیا غصہ نوجوانوں سے بات چیت کی پہل کریں گے؟
دیدی یہ وشے بڑا مہتوپورن ہے بھارت میں، اور بھارت میں اس پہ بڑی گہن بحث ہو رہی ہے
جی،
اور لوک تنتر میں ویسے ہوتا بھی یہ ہے کہ کوئی بڑا ایشو اٹھتا ہے اور اس پہ بڑے پیمانے پہ بحث ہوتی ہے اور بحث سے ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے
جی.
یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے ورگوں میں بھاری آکروش ہے، بہت زیادہ آکروش ہے، اور اسی طرح یواؤں کے بھوشیہ کو لے کر گہری چنتا ہے ایک بڑے ورگ میں، اس کے چلتے کئی جگہوں پر آگزنی کی گھٹنائیں ہوئیں
جی.
اور ہنسا کی گھٹنائیں ہوئیں، یہ چیزیں دکھد ہیں اور ان سے یقیناً اچھی تصویر تو نہیں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سرکار ایک بڑی یوجنا لانا چاہ رہی ہے، لاگو کرنا چاہ رہی ہے، اور سرکار نے اس کے لیے کچھ ترک بھی رکھے ہیں، اور سرکار بہت درڑھ طریقے سے اس پہ آگے بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے یہ تو سینا کی یوجنا ہے اور سینا کا دائرہ ہے، لیکن سرکار کی یوجنا کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے، اور سینا میں بھی سرکار کی یوجنا کے حساب سے عمل ہو رہا ہے، اس طرح کی مانیتا ہے. تو لوگوں میں بڑا آکروش ہے، اور گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی سرکار کی سوچ کچھ ہے اور یواؤں کی اور لوگوں کی سوچ جو ہے ان میں انتر بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ اس سے نتیجے نکالے جا رہے ہیں
جی.
تو اب ہم پہنچ رہے ہیں کارکرم کے ایک بڑے سندر بھاگ کی طرف، جو ہے سنسکرتی سے جڑی خبر کا بھاگ. دیدی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر لے کے آتی ہیں جو بڑی دلچسپ ہوتی ہے.
جی بھیا، آج بہت ہی دلچسپ ہے، میرے لیے بھی دلچسپ ہے اور شروتاؤں کے لیے بھی. یہ ہے ایران میں گہنوں کا اتہاس.
جی،
منشیہ نے ہمیشہ محسوس کیا کہ انہیں گہنوں اور گہنوں کی آوشکتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سبھی یوگوں میں ایسی لگژری یا ولاسیتا کی وستوؤں کا سواگت اور آنند لیا ہے. اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ ورش 2000 عیسا پورو میں ایرانی پٹھار کے نواسیوں نے رنگین موتیوں کا اپیوگ کر کے گہنے اور گہنے بنانا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح انہوں نے سجاوٹی وستوؤں اور گہنوں کے پرتی اپنا پیار دکھایا تھا. پراتتو ادھیانوں سے پتہ چلتا ہے کہ منشیوں دوارا استعمال کیے جانے والے شروعاتی آبھوشنوں میں ان کے دوارا شکار کیے گئے جانوروں کے دانت اور پنجے تھے.
جی،
ان وستوؤں کو پراکرتک ریشوں کی کسٹرنگ کا اپیوگ کر کے ایک دوسرے سے جوڑا گیا اور موتیوں کا ایک نیا سموہ بنایا گیا جو بہت سندر لگ رہا تھا. منشیوں دوارا اپیوگ کیے جانے والے سب سے پراچین آبھوشن سیپ ہے، جنہیں کرتریم روپ سے چھیدا گیا، اور دھاتو کے گہنے بنانے اور سونے چاندی اور قیمتی رتنوں کے اپیوگ کے بعد یہ آبھوشن زیادہ تر شاہی ہار، مکوٹ، کنگن، ہتھیار اور راجاؤں کے لیے یدھ کے اپکرن، گن مانیہ ویکتیوں کے لیے ویش بھوشا اور رانیوں کے لیے آدھا مکوٹ بنانے میں ہونے لگے تھے
جی.
اور مدھیہ سنسکرتی اور سبھیتا کو کلاتمک شیلی کے پرتھم شرینی کے روپ میں جانا جاتا تھا. تو سیپ کے آبھوشنوں میں مولسک میں ایک یا دو سیپ ہوتے ہیں جو چونے سے بنے ہوتے ہیں، اور سیپ کا کھول اکثر سلیکیٹ کا بنا ہوتا ہے. سیپ کی کچھ پرجاتیاں کھانے یوگیہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایران میں لوگ انہیں مکھیہ روپ سے موتیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں
جی.
تو دوستو، سیپ کے آبھوشنوں کا پریوگ کرنے کے لابھوں کے بارے میں بھی بتاتے چلتے ہیں. تو پراکرتک رنگ پیلٹ ہونے کے ناطے سیپ دنیا کے ادھکانش رنگین روشنی دیتی ہے. نیلا، ہرا اور سنہرا ایسے رنگ ہے جو ایک سیپ میں پائے جا سکتے ہیں. پتھری کی سمسیا کی تھراپی میں سیپ کا اپیوگ مانس پیشیوں میں درد اور یہاں تک کہ ہردے اور گیسٹرو انٹسٹائنل سمبندھی وکاروں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے.
اور شوتا باری ہے آپ کے کمنٹس کی، جو آپ نے الگ الگ सामग्रियों और खबरों पर किए हैं।
जी, आले सऊद ने ईद की भी नहीं रखी लाज। सऊदी अरब के पाशविक हमलों में यमनी मुसलमानों के घर छाया मातम। इस पर मोहम्मद अली लिखते हैं, पश्चिम में क्रिमिनल मैन स्ट्रीम मीडिया यूक्रेन के बारे में डेली बेसिस पर बात कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है, लेकिन यमन जो अधिक विकट स्थिति में है, सऊदी द्वारा सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं, इसे लगभग भुला दिया गया है। ये एक ही बात पूरे पश्चिमी मीडिया की कहानी पर संदेह करने के लिए काफ़ी है।
ये अहम पॉइंट है कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन के मसले को उठाया। ज़ाहिर है इस मसले को उठाने में कोई गलत बात नहीं है और होना चाहिए। जब एक युद्ध हो गया और युद्ध जिस तरह से तबाही लेके आता है, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है, तो उस पर आवाज़ उठनी ही चाहिए और उसको रोकने की कोशिश होनी ही चाहिए, ये ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही ये देखने में आता है कि पश्चिमी मीडिया और वहाँ के राजनीतिक हलके, दूसरे गलियारे इस तरह से अपने होंठ सी लेते हैं कि जैसे कि वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। यमन में जो हालात हैं, जिस तरह से वहाँ भुखमरी का माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह वहाँ पर अकाल छाया रहा, जिस तरह वहाँ पर मौतें हुई, बच्चों की मौतें हुई, 17,000 तक के आंकड़े हैं कि 17,000 बच्चे काल के गाल में समा गए, और सऊदी अरब का अलायंस जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें इसराइल शामिल है, जिसमें दूसरे देश शामिल हैं, वो बमबारी करते रहे और लोगों को कत्ल करते रहे। यमन की घेराबंदी, नाकाबंदी कर ली, यमन की जो एक बंदरगाह हुदैदा है जहाँ से वहाँ सामान जाता है यमन, उस सब को पूरी तरह से रोके रखा, और ये एक महीना, दो महीना और एक साल नहीं, पूरे 8 साल, ये 8वां साल चल रहा है कि ये सिलसिला चलता रहा और वो खामोश रहे। तो ये बात ज़रूर सवाल उठाने के लिए उठाने की बात, यानी तर्क एक देती है कि क्यों ये देश और ये गलियारे यमन पे नहीं बोलते, फिलिस्तीन पे नहीं बोलते।
श्रीलंका में लगी आग का कौन है जिम्मेदार? इस देश की बर्बादी का कौन है मुजरिम? अर्थव्यवस्था की डूबती नाव को कौन लगाएगा पार? इस पर आर सिंह लिखते हैं, राजपक्षे श्रीलंका के शक्तिशाली सिंहली बौद्ध मोहम्मद के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें 2009 में देश के 26 साल के लंबे गृह युद्ध को समाप्त करने का श्रेय प्राप्त किया है।
जी।
लेकिन युद्ध के अंतिम 4 हफ्तों में 40,000 नागरिक हताहतों का उल्लेख किए बिना यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 2009 में इस वध के लिए श्रीलंका सरकार की सराहना की।
जी, श्रीलंका का इस समय का जो संकट है, अगर उसके बारे में हम बात करें, इसके कई कारण गिनवाए जाते हैं। राजपक्षे परिवार की जहाँ तक बात है, राजपक्षे परिवार ने लंबे समय तक श्रीलंका पर शासन किया, लेकिन इस समय जो हालात हैं वो बेहद दयनीय हैं, बड़ी दुर्दशा है वहाँ पर। लोग इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ियाँ हैं उनमें डीजल और पेट्रोल नहीं है, उसके भराने के पैसे नहीं हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदने की ताकत नहीं है लोगों में। ये तब है जबकि श्रीलंका दक्षिणी एशिया के देशों में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत से भी आगे माना जाता था, पर कैपिटा इनकम वहाँ लगभग 2 बराबर थी भारत के। तो ऐसी सूरत में जो आज हालात हैं वो यकीनन दयनीय हैं, और निश्चित रूप से ये गलत नीतियों और गलत योजनाओं का नतीजा है, और इसी वजह से लोगों में आक्रोश है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आशा ये की जाती है कि हालात वहाँ पर सामान्य हों, सरकार जो राजनीतिक एक शून्य पैदा हो गया है वो दूर हो, और हालात धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में लौटे। और श्रोताओ, अब बारी है उस भाग की जिसमें हम अपने किसी न किसी श्रोता के विचारों से अवगत होते हैं। तो दीदी बताएं कि किन श्रोता को इस हफ्ते के लिए चुना है।
जी, ऊंची टकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
मैं दिलशाद हुसैन ऊंची टकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं रेडियो तेहरान का ये कहूँ कि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ तो ठीक नहीं होगा, आप लोग तो जानते हैं। वैसे तो मैं उर्दू सर्विस का लिसनर हूँ, फिर भी हिंदी सुनता हूँ, वही कार्यक्रम तो हमको हिंदी में सुनने को मिलते हैं। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी सेवा में कोई कमी नहीं, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, शिक्षा प्रद, प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी हमें लगता है। हमें अपने दीन के बारे में बहुत मालूमात उनको रेडियो तेहरान से मिलती है, जो हम नहीं, कुछ ऐसी जानकारी हमको मिलती है जो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम रेडियो तेहरान को बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बस हमारी एक ही परेशानी है, हम तो रेडियो सुनते हैं, नेट से सुनते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मध्य परिवार के हैं रेडियो ही सुनते हैं।
तो दीदी अब हमारे पास समय बचा नहीं है, तो आप, हमें लगता है बस श्रोताओं से अनुमति लें, इतना ही समय हमारे पास रह गया है। तो श्रोताओं, हम आपसे अगले पत्र संसार में फिर मिलेंगे, आपके कुछ ईमेल्स के साथ, आपके कमेंट्स के साथ, आपके विचारों के साथ, और जो भी मुद्दे होंगे उनके बारे में बात की जाएगी पत्र संसार में। तो अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र संसार, और ये प्रसारण पेश किया जा रहा था शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर। हमें आशा है हमारा आज का प्रसारण आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506542। तो श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और अन्य साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। शुभ रात्रि। Thank you.